प्रातः क्लास चल रहा था, 5/11/1966। आठवें पेज में मध्याह्न में बात चल रही थी, मनुष्यात्माओं का परिवर्तन और फिर 5 जड़ तत्वों का परिवर्तन। जो महामृत्यु के समय एकदम तामसी रूप धारण करते हैं, कौन है? मनुष्य आत्माएं तो पहले परिवर्तन होती हैं, क्योंकि मनन चिंतन मंथन वाली हैं, ज्ञान धारण कर सकती हैं, इसलिए उनका तो टाइम बता दिया। पुरुषोत्तम संगम युग, उससे भी पहले संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। सतयुग का आदि तो जरूर स्वर्णिम संगम युग को ही कहेंगे। जिस स्वर्णिम संगम युग में मनन चिंतन मंथन शील आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा से राजयोग सीख करके नंबरवार संपन्न बन जाती हैं। उनके लिए कितना टाइम बताया है? 40 से 50 वर्ष में संपन्न बन जाती हैं। है 40 से 50 वर्ष में राजयोगी संपन्न बनेंगे। जो राजयोग सीख करके राजाएं बनते हैं या उनकी प्रजा भी संपन्न बन जाएगी। राजयोग सीखने वाली राजा बच्चे सुप्रीम सोल बाप के अजीज बच्चे पहले सात्विक बनते हैं, फिर उनकी प्रजा भी नंबर वार सात्विक बनती है। उस प्रजा में 4.5 लाख आ जाते हैं, सब बीज हैं। किसके बीज हैं? कितने वर्ष की सृष्टि के बीज हैं? है? अरे सृष्टि कितने साल की है? 5000 साल में जो भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पत्तों के रूप में उतरती है, उन सब के बीज हैं। कितने? 4.5 लाख। तो 5000 वर्ष जब पूरा होता है, जो बताया कि संगम युग तुम बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम? 100 वर्ष। कब पूरा होता है? 2036 में। तो बीज रूप आत्माओं का काम तो संपन्न हुआ, और बीज सुधरता है तो बीज के अंदर बैठा हुआ सारा वृक्ष भी सुधर जाता है। तो वो तो चैतन्य आत्माओं की बात हुई। उसके बाद भी कुछ है, है? पांच जड़ तत्व जो बहुत तामसी बन जाते हैं, सारी सृष्टि का विनाश करते हैं, जिन्हें प्रकृति कहा जाता है। पांच जड़ तत्वों का संघात समूह प्रकृष्ट कृति, उसके गीता में भी दो रूप बताए हैं, एक संपूर्ण जड़ प्रकृति पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश टोटल जड़त्वमयी, और उनके भी रचयिता परा प्रकृति जिनके आधार पर जड़त्वमयी प्रकृति भी सात्विक बनती है। तो परा प्रकृति में परे ते परे रहने वाली प्रकृति में ये पांच तत्व हैं, पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। ये कैसे बन गए सृष्टि के अंत में? बहुत तामसी बन गए, इतने तामसी बन जाते कि सारी मानवीय सृष्टि को अपने अंडर में ले लेते। जो कहा गया राज करेगा खालसा, कौन राज करेगा? कौन खालसा, कौन खालिस? कालस माने पवित्र। कैसा पवित्र? पंच तत्वों का चैतन्य संघात होते हुए भी जो भी सृष्टि रूपी रंग मंच पर पांच तत्वों के पुतले हैं मनुष्य मात्र, उन सबको अपने अंडर दी कंट्रोल ले लेती है। सबके ऊपर राज करती है, राज करेगा खालसा। परा प्रकृति है, परम ब्रह्म की है, परम ब्रह्म प्रकृति पति हुआ, उसको तो कंट्रोल में नहीं ले पाती, बाकी जो प्रकृति पति के बच्चे हैं, रचना है, जिस रचना में पहली रचना प्रकृति है, पांच तत्वों का स्पेशल पुतला, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण कृति रचना जिसकी की गई, रचयिता ने एड़ी चोटी की पावर लगाकर उसकी रचना की, इसलिए बहुत पावरफुल बन गई। पहली रचना है ना, ज्यादा पावरफुल तो होगी, और उसको कहा जाता है पृथ्वी माता, क्योंकि पांच तत्वों में सबसे प्रबल तत्व कौन सा है जिसमें पांचों तत्व समाये हुए हैं। कौन सा तत्व? पृथ्वी। तो वो पृथ्वी माता जो परा प्रकृति में है उसको शांत करने के लिए तामसी से सात्विक बनाने के लिए टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? है, लगेगा। क्योंकि जो मनन चिंतनशील आत्माएं मनुष्यों की हैं, वो तो ज्ञान से सुधर जाती है, परंतु प्रकृति तो जड़ तत्व वाली है, ज्ञान से सुधरने वाली है नहीं? कैसे सुधरेगी? योग बल से सुधरती है। योग बल कहो, सच्चा प्यार कहो, तो उसे सुधारने के लिए और उसके आधार पर चलने वाली जो भी जड़ प्रकृति के पांच तत्व हैं, परा प्रकृति से नीचे हैं, टोटल जड़त्वमयी हैं, उन सबको परिवर्तन करने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? है? कि 2036 के बाद जो आत्माएं पवित्र बनी, बाप के घर के वासी हुई, आत्मलोक में पहुंची, तुरंत ही वापस आ जाएंगी? है, क्यों नहीं आ जाएंगी? क्योंकि पांच तत्व जिनसे पुतला बनता है, शरीर रूपी, वो तो तामसी बना पड़ा है। कहां? आत्मलोक में या मनुष्य सृष्टि में? मनुष्य सृष्टि में तामसी बना पड़ा है। तो तामसी तत्वों से जो बना हुआ शरीर रूपी चोला होगा, उसमें सात्विक आत्माएं प्रवेश करेंगी? करेंगी? नहीं कर सकते। तो पांच तत्व के पुतले को सात्विक बनाना पड़े, उनमें भी पहला पुतला कौन सा है? जो सात्विक बने और उसमें जो अव्वल नंबर आत्मा है, अव्वल नंबर योगी है, पहले तो वो सात्विक चोले में प्रवेश करे। बाद में दूसरी आत्माएं नंबर वार आए, और चोले तो सबके बर्फ में दबे पड़े हैं। तो उन चोलों को सात्विक बनाने का काम परमात्मा का ही है। कैसी आत्मा? परमात्मा। किससे टैली किया? परमात्मा को किससे टैली किया? आत्माओं से। सुप्रीम सोल को किसी से टैली किया जा सकता है? है? नहीं। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वही आत्मा पहले पहले परम धाम वासी बनती है और वही पहले पहले इस सृष्टि पर उतरती है। लेकिन उतरेगी कब? जब बर्फ में दबा हुआ चूल्हा कैसा बने? सात्विक बने। तो उस चूल्हे को सात्विक बनाने में क्या करना पड़े? है जो जड़ तत्व हैं और उनमें भी जो परा प्रकृति है उसको शांत करना पड़े। स्नेह के बल से, याद के बल से, जिसे कहते हैं योग बल। याद बल और योग बल अलग अलग बात है, एक ही बात है, एक ही बात। तो अपने ही चोले में जिसे भारत में आज भी द्वैतवादी द्वापर युग से ही लिंग के रूप में पूजा जाता रहा। कौन से मंदिर में? हैं? द्वापर के आदि में कौन से मंदिर में? मंदिर का नाम नहीं, सोमनाथ मंदिर में लिंग के रूप में पूजा जाता रहा। पूजा साकार की होती है, बड़े रूप की होती है या निराकार आत्मा की होती है? साकार की पूजा होती है। निराकार आत्मा को पहचान कर याद किया जा सकता है कि निराकार आत्मा का रूप क्या है। रूप को जानेंगे तो याद करेंगे, जानेंगे ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? तो जो अव्वल नंबर आत्मा है मनुष्य सृष्टि की, वो तो पहले ही जान लेती है, जिसका प्रूफ पिछले साल की अव्यक्तवाणी में ही दे दिया। कि बाप दादा का स्मृति दिवस 5 दिसंबर है। क्या 18 जनवरी असली स्मृति दिवस नहीं है? ऐसे कैसे? जब बाप दादा कहते हैं तो कहने वालों की बुद्धि में साकार आता है, साकार आत्माओं की याद आती है या निराकार आत्माओं की याद आती है? राम कृष्ण की साकार आत्माओं की याद भरी पड़ी है। इसे साबित होता है कि बाप दादा को उस रूप में याद करने वाले देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी है? हैं? देह अभिमानी हुआ। वास्तव में मनुष्य आत्मा है 500-700 करोड़ और उनका बाप, जो बापों का भी बाप है उसका भी बाप, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर, जिस ग्रैंडफादर का वर्षा सबको मिलता है। पांच सौ सात सौ करोड़ आत्माओं को भी मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। उनके जो हेड्स हैं अपने अपने, उन्हें इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके सहयोगियों को भी मिलता है कम से कम एक जन्म का जीवन मुक्ति का, मुक्ति का वर्षा। और उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, जिसे हर धर्म में मान्यता है, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ, उस आदिदेव को भी मिलता है। वास्तव में वो आदिदेव जो सारी 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है, तो बापों का भी बाप है और उसका भी बाप कोई है या नहीं? अरे प्रजापिता का भी कोई बाप है या नहीं? एडम का भी बाप है, आदम का भी बाप है। इसलिए मुसलमान कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, क्योंकि खुदा जो खुद आता है, बुलाने पर नहीं आता, वो खुदा ये बात बोलता है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर जाऊंगा। कैसा बना के जाऊंगा? आप समान बना के जाऊंगा, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। तो निराकारी आत्माओं में जो अव्वल नंबर मनुष्य आत्मा निराकारी बनती है, उसका भी वो बाप हुआ, क्योंकि उसको भी आत्मिक रूप में जन्म देने वाला कौन हुआ? वो स्वयं अपने को ज्योतिबिंदु आत्मा पहचान लेता है या उसको कोई जन्म देता है? शिव बाप जन्म देता है। वो बाप जन्म देता है जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है और आत्माओं के शरीर का नाम पड़ता है, शरीर के आधार पर काम करती है वैसा नाम पड़ता है। तो जो शिव बाप है वो बापों का भी बाप और उसका भी बाप। तो क्या हुआ? बाप का भी बाप क्या हुआ? बाबा हुआ, ग्रैंडफादर कहा जाता है बाबा को। तो वो ग्रैंडफादर क्या देता है? फादर है तो कुछ देता है वर्षे में कि नहीं है? ऐसे ही आया राम गया राम, धर्म पिताओं की तरह है। क्या देता है? अरे धनवान बाप धन देता है, जमींदार बाप जमीन देता है वर्षे में, वो सुप्रीम सोल बाप क्या देता है? वो सुप्रीम सोल बाप ज्ञान का अखूट भंडार है, सदा निराकार है, कभी जन्मण के चक्र में नहीं आता, इसलिए तीनों काल का ज्ञाता है, सत्य का ज्ञाता है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है वो ही सुंदर है। अकल्याणकारी है तो सुंदर नहीं हो सकता। तो वो शिव इस सृष्टि पर आकर के क्या देता है, निराकार आत्माओं को निराकारी वर्षा निराकार बाप से मिलता है ना, क्या और कुछ मिलता है? जमीन जायदाद रुपया पैसा क्या मिलता है? है राजाई लेके आता है उसके पास राजाई है राजाई भी नहीं है उसके पास। राजा बनाने का तरीका है, युक्ति है, ज्ञान है। वो ज्ञान का वर्षा लेकर आता है, किसे देता है? अरे बच्चों को, सबको देता है। हिस्ट्री में राजाओं ने अपना वर्षा किसको दिया?
बड़े बच्चों।
तो परंपरा कहाँ से शुरू हुई होगी?
संगम युग
में किसने शुरू की होगी? शिव बाप ने ये परंपरा शुरू की कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो जन्मन के चक्र में आने वाली हैं, उनमें जो बड़े से बड़ा बच्चा है उस बड़े बच्चे को आकर के ज्ञान का अखूट भंडार सौंप देता है। दादा लेकर आज ब्रह्मा को नहीं सौंपता है? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में प्रवेश नहीं करता ज्ञान सुनाने के लिए है? अरे करता है कि नहीं
करता है?
फिर तो ज्ञान का वर्षा किसके तन के द्वारा दिया? प्रजापिता ब्रह्मा। दादा लेखराज को प्रजापिता कहेंगे? फिर
माँ के द्वारा, माँ का पाठ बदल के लिए प्रवेश किया, माता का पाठ बजा।
चलो माता का पाठ बजाया वो भी ठीक है, माता के द्वारा ही बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, गोद में लिया जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि ब्रह्मा की ही औलाद है, लेकिन ब्रह्मा ने बड़ी, मामा ने माँ, दुनिया की जो बड़े से बड़ी माँ है उसमें भी बीज डालने वाला कोई बाप बीज रूप होगा ना। कि माता के बुद्ध रूपी पेट में अपने आप बीज आ जाता है, है? तो किसने डाला, कब डाला? आत्माओं के बाप ने डाला। किसे में डाला? दादा लेखराज ब्रह्मा में। हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सो विष्णु की सहयोगी भुजा तो बनेंगे, लेकिन भुजाओं को चलाने वाले नहीं बनते। जिस माता के बुद्ध रूपी पेट में वो ज्ञान का बीज पहले पहले पड़ा सुप्रीम सोल बाप के द्वारा, वो कौन? ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्मा, परे ते परे ब्रह्मा। वो कौन? वो ही ब्रह्मा जिसके तन को मुकर्रर रथ कहा गया। कैसा रथ? मुकर्रर रथ, आदि सो अंत का रथ। मध्य में फिर होगा कि नहीं है? मध्य में भी होगा, आदि में भी मुकर्रर है, मध्य में भी मुकर्रर है और संगम के अंत में भी मुकर्रर रथ। उस मुकर्रर रथ का ही नाम परम ब्रह्म है। बड़ी से बड़ी माँ परम ब्रह्म जो माँ देह अभिमान का पुतला होती है, जिस माँ से सभी आत्माएं साकार पुतले के रूप में जन्म लेती हैं, है? जैसी दुनिया में भी आत्मा आती है तो माँ के पेट में पुतला पहले ही तैयार होता है या आत्मा आती है तब तैयार होता है? पहले ही तैयार होता है। तो पहले पुतला चाहिए जड़ तत्व वाला या पहले पेट में आत्मा चाहिए? पुतला चाहिए। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जब नई मनुष्य सृष्टि तैयार होती है तो पहले आत्माएं प्रवेश करेंगी या पांच तत्वों के पुतले बनेंगे? है? पांच तत्वों के पुतले तैयार होते हैं। उनमें जो पहले नंबर अव्वल नंबर पुतला है जिसके द्वारा मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह ने आकर अव्वल दीन की स्थापना की। क्या अल्लाह क्या करता है? दीन माने धर्म। जो अव्वल नंबर धर्म है वो अल्लाह ने तैयार किया बनाया। इस्लाम धर्म तो अव्वल नंबर नहीं है। इस्लाम से भी पहले कोई धर्म था या नहीं था दुनिया में? है? था। उसको कहा जाता है सनातन धर्म। सनातन माने पुराने थे, पुराना। तो वो अव्वल नंबर आत्मा जब इस सृष्टि पर उतरे, पहले पहले उतरेगी ना, है? तो जब पहले पहले उतरेगी तो उस अव्वल नंबर आत्मा को शरीर रूपी पुतला चाहिए या नहीं चाहिए? है? कंप्लीट चाहिए, सात्विक स्टेज वाला या अधूरा चाहिए? कंप्लीट चाहिए। ऐसा कंप्लीट पुतला जिसका रचयिता साकार में दुनिया में कोई नहीं होता। जो होता है कोई नहीं होता। तो वो पुतला जिसे लिंग रूप में पूजा जाता है, साकार पुतला, पांच तत्वों का सात्विक ते सात्विक पुतला, वो लिंग पूजा जाता है पुराने ते पुराने मंदिरों में, बड़े रूप की ही पूजा होती है। लेकिन पूजा कब होती है? जब उस पुतले में चैतन्य आत्मा प्रवेश करे। तो चैतन्य आत्मा जो प्रवेश करती है वो शिव समान होगी जो सुप्रीम सोल बाप का विरुद्ध है। क्या मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूँ, तो जो बच्चा पहले पहले बाप समान बनता है ज्योति बिंदु निराकारी स्टेज में निरंतर स्थिर हो जाता है, वो ही आत्मा सत्य सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त पहले पहले तैयार होती है। जड़ प्रकृति को भी योग बल के द्वारा तैयार करती है। फिर नंबर बार आत्मा जड़ प्रकृति के जो पांच देवताएं हैं कौन कौन, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये तैयार होते हैं और उसके बाद सभी आत्माओं का नंबर लगता है। तो बताया कि 2036 तक जो मनुष्य आत्माएं हैं जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली नहीं है, चैतन्य बुद्धि वाली है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, वो सुधरते हैं, फिर उनके आधार पर 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि भी सुधरती तो है, लेकिन उस मनुष्य सृष्टि में भी जो पहली पहली प्रजा है प्रकृति माता पहली प्रजा होती है ना, पहली रचना नहीं होती, होती है। तो जो पहली पहली रचना है माता, उसमें जो परा प्रकृति की आत्माएं हैं वो संपन्न बनती हैं, निराकारी स्टेज धारण करती हैं और निराकारी स्टेज धारण करके जो अविनाशी तत्व है जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, क्या परम ब्रह्म कैसा तत्व है, ब्रह्मलोक कैसा तत्व है, अविनाशी तत्व है। और बाप कहते हैं तुम बच्चे ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो उतारने वाले नंबर वार होंगे कि एक जैसे होंगे, उनमें जो अव्वल नंबर है वो अपने अंदर परम धाम को उतार लेता है, उसकी आत्मा कहाँ रहती है निरंतर, परम धाम में रहने का अनुभूति करती है। इसलिए उसका जो जड़ शरीर है जिसमें आत्मा रहती है वो जड़त्वमयी शरीर ही परम ब्रह्म हो जाता है। इसलिए गीता में कहा है मत योनि महत् ब्रह्म, मेरी योनि रूपी माता कौन है, महत् ब्रह्म। महत् ब्रह्म को परम ब्रह्म को हो बात एक ही, उसमें मैं प्रवेश करके बीज डालता हूँ। कौन कौन सी आत्मा डालती है बीज ज्ञान का, शिव बाप। तो कोई शरीर रूपी पुरुषार्थी है जो अव्वल नंबर में ब्रह्मलोक क्रिएट करता है अपने अंदर, महत् ब्रह्म। उस महत् ब्रह्म में ज्ञान का बीज पड़ता है, वो ज्ञान का बीज पहले बेसिक, बाद में हायर एडवांस ज्ञान, और वो एडवांस ज्ञान भी लेने वाले जो बच्चे हैं उनको रुद्रमाला कहा जाता है। किसकी माला, किसका संगठन, माला रूपी रुद्र का संगठन, रुद्र शिव का नाम नहीं है, शंकर का भी नाम नहीं है। शंकर तो पुरुषार्थी है याद का, शंकर अधूरा रूप है या संपन्न आत्मा है, है अधूरा रूप है, पुरुषार्थी रूप है, संपन्न नहीं है। वो आत्मा जब संपन्न बनती है तो वो शरीर रूपी तुरिया शरीर रूपी घर भी है, जैसे परम धाम तुरिया तत्व है, पंच तत्व तो है, जड़ तत्व तो है, लेकिन पांच तत्वों के मुकाबले अनोखा है, तुरिया है या और तत्वों के समान है, तुरिया तत्व। वो तुरिया तत्व वो आत्मा प्रैक्टिस करके धारण करती है, और वो ही तुरिया तत्व योग बल से सात्विक बनता है, तो सात्विक तुरिया तत्व को छोड़ करके अर्थात मुक्ति को प्राप्त करके वो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में तब उतरती है जब सारी मनुष्य सृष्टि जड़ और जंगम, जंगम माने चैतन्य, जड़ तत्व वाली सृष्टि और चैतन्य आत्माओं वाली सृष्टि सात्विक बने, तब वो अव्वल नंबर की आत्मा पहले पहले अपने शरीर सात्विक में प्रवेश करे, और जो पांच तत्वों का तुरिया तत्व कहा जाता है, ब्रह्मलोक, महाब्रह्म, जहां से बच्चे का शरीर संपूर्ण रूप धारण करता है, आत्मिक स्टेज की बात है, तो वो आत्मा इस साकार सृष्टि पर प्रत्यक्ष होने लगती है। तो बताया कि तुम बच्चों को इस सृष्टि में राज्य करने के लिए आना ही तब है जब ये सब इस सृष्टि का कल क्लियर हो जाए, इस मनुष्य सृष्टि की तामसी आत्माएं तो पहले ही सत्व प्रधान बनती हैं 100 वर्ष के अंदर, लेकिन पांच तत्व जो तमो प्रधान रह जाते हैं वो भी क्लियर हो जाएं, सात्विक बन जाएं, तो बताया आत्माओं के संपन्न होने के बाद पांच जड़ तत्व भी संपन्न बनते हैं, चाहे वो सामान्य प्रकृति के हों चाहे परात प्रकृति के हों। तो दोनों प्रक्रियाओं के बीच में क्या होता है, वो भी आगे चल करके देखना। आगे माने कब? आगे चल करके देखना कब?
है?
इसके बाद, किसके बाद? हाँ, 2036 के बाद। कौन देखेगा? है 500 करोड़ का तो विनाश हो जाएगा, 700 करोड़ का। मनुष्य आत्माओं की तो बात छोड़ो, प्राणी मात्र का भी विनाश हो जाएगा, जो देखेगा कौन? साढ़े चार लाख आत्माएं देखेंगी, जब बर्फ में दब जाएंगी तब। है कौन देखेगा?
जो नंबर वाला आत्मा है।
नंबर वाला आत्मा है कौन? अव्वल नंबर कौन?
अव्वल नंबर आत्मा।
अव्वल नंबर आत्मा जिसके लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है इस सृष्टि पर, जो सत्य का कभी विनाश नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इस सृष्टि में जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता, सद्धर्म का कभी विनाश नहीं होता। इस सृष्टि पर जो सच्च खंड है भारत, उसका भी कभी विनाश नहीं होता। बाकी जो झूठे धर्म खंड हैं, जो आए ही बाद में है, कि सदा काल है, है? बाद में आते हैं, तो जो न थे पहले न अंत में रहेंगे, वो तो झूठे हैं इसलिए नहीं रहेंगे। बाकी कौन रहेगा? सत्य रहेगा। तो सत्य जड़ भारत जड़ जमीन ही रहेगी, जिसे भारत माता समझ लिया है। जमीन को माता कहा जाता है क्या? जड़ जमीन को वंदे मातरम, जड़त्व की बंदे की वंदना की जाती है क्या? माना परा प्रकृति में से कोई ऐसा तत्व है माता के रूप में, पृथ्वी माता, जिसकी वंदना करते हैं। कैसी पृथ्वी माता? जैसे गौ माता होती है। मनुष्य है या जानवर? गौ माता। गौ से उपमा क्यों दी? है सीधी सादी है इसलिए, बाकी मनुष्य है। सीधी सादी है इसलिए गौ कहा गया, जानवर तो नहीं है। अरे जानवर है या नहीं है? हैं? जानवर गऊ के शरीर में 33 करोड़ देवताएं क्यों दिखा दिए? हाँ बोलो बोलो, सही बोला। जड़ तुम्हें बुद्धि है क्या? माता तो है लेकिन बुद्धि कैसी है? जड़ तुम्हें, ऐसी जड़ तुम्हें बुद्धि है कि जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है साकार में, उस बाप को लंबे समय तक जानकर मानकर साथ में रहते हुए भी पहचानने में भूल हो जाती है या पहचान लेती है? भूल हो जाती है, इसलिए गौ की उपमा दी है। बाकी भगवान ने कोई गऊओं को नहीं चराया था, जानवर गऊओं को, जो भक्ति मार्ग में दिखा दिया। किन गऊओं की बात है? भारत की कन्याओं माताओं की बात है, जहाँ भारत में कन्याओं को जीवन में माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं जीवन भर सीधी शादी होकर वहीं बंद करके रहती हैं। खुदा न खास्ता पति का शरीर छूट जाए तो भी पति के घर को छोड़ती नहीं है। माना विचार दोष में आती है या नहीं आती है, है? नहीं आती है। जीवन भर पवित्र बन के रहती है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी जैसे सिख लोग कहते हैं, ऐसे ही क्या एक पति तो उसको सदा पवित्र कहेंगे अपवित्र कहेंगे? पवित्र है। ऐसी धारणा को धारण करने वाली वो गऊएं कही गई हैं। जानवर से उनका मिसाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ऐसी है जड़त्वमयी। फिर भारत माता क्यों कहा जाता है? हा? भारत माता को तो गौ का रूप नहीं दिखाते, दिखाते हैं? है? हाथ में क्या लिए हुए दिखाते हैं? है? एक हाथ में झंडा, एक हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब तीन शूल, ब्रह्मा रूपी, विष्णु रूपी और शंकर रूपी शूल, माने तीन बाण दिखाते हैं शूल के समान। वो सदैव बुद्धि रूपी हाथ में रहते हैं। तीनों का ज्ञान त्रिशूल में समाया हुआ है और दूसरे हाथ में झंडा, विजय की निशानी। किसी देश पर विजय पाते हैं तो क्या करते हैं? झंडा गाड़ देते हैं। तो ये विजय का झंडा माता के हाथ में दिखाया, गौ के हाथ में नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि वो माता सत्य को, सत्य सनातन धर्म को, सत्य सनातन धर्म के प्रणेता को पहचान लेती है, ज्ञान सूर्य को पहचान लेती है और चंद्रवंश को त्याग करके कहाँ आ जाती? सूर्य वंश में आ जाती। इसलिए जो भी सूर्यवंशी है वो 4.5 लाख में है या नहीं है? 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 ऐसे नहीं कि 2.25 लाख ही सूर्यवंशी है। जो चंद्रवंश से कन्याएं स्वयं वरण करके आती हैं सूर्यवंश में, उनका वंश बदल जाता है। क्या वंश हो गया? सूर्यवंश हो गया। रुद्रमाला के मणके बन गई। जो रुद्रमाला के मणके हैं वो समान स्टेज वाले बन जाते हैं या नीचे स्टेज वाले बनते? अर्धांगिनी बन गई या नहीं बन गई? है? आधा अंग पार्वती का, लक्ष्मी का, आधा अंग पुरुष का दिखाते हैं। फिर उनको कहते हैं त्वमेव माता च पिता तमेव। तो बाप कहते हैं इस सृष्टि के परिवर्तन में आगे चल करके क्या होगा वो सब बातें छोड़ दो, पहले वो बात याद करो कि पतित पावन बाप हमको वर्षा देते हैं। बाप है तो कुछ देगा कि नहीं देगा, हैं?
देगा।
कई का वर्षा देते हैं, हैं? यहाँ हाँ सुख का माना जीवन मुक्ति का, जीवन में रहते सुख मिले दुख न मिले, है ना, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति का वर्षा। और उससे भी पहले दुखों से छुटकारा, इस दुखी दुनिया से आत्मा छुटकारा पाए, परमधाम वासी बने। कहाँ का वासी, कहाँ है परमधाम?
इसी सृष्टि में।
इसी सृष्टि में कैसे?
जब पाप आएगा ना तुम बच्चों परमधाम इस सृष्टि में उतारेंगे।
हाँ
नहीं।
तो इसी सृष्टि में कोई बीज रूप बाप है क्या, जिसको हम कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव। शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो शिवलिंग की तरफ उन्मुख होकर के कहते हैं तमेव माता च पिता तम एव, एक या दो, तम माने तू, एक माने पार्वती की तरफ इशारा नहीं करते हैं, तम माने किसको, शिवलिंग को, वो एक ही व्यक्तित्व है जिसमें आत्मा भी है और पांच तत्वों का अविनाशी पुतला भी है। पुतला अविनाशी है या विनाशी है?
विनाशी है।
पुतला विनाशी है,
अविनाशी।
माना भक्ति मार्ग में शंकर को मानते हैं कि उसका कोई जन्मदाता नहीं है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, उसके माँ बाप का नाम किसी को पता नहीं है, है पता
नहीं,
तो ऑलराउंड पार्टधारी होगा ना। 5000 वर्ष के सच रूपी रंगमंच पर विनाशी पार्ट होगा या अविनाशी पार्ट होगा?
अविनाशी
पार्ट है, वो एक ही बीज है मनुष्य सृष्टि का जो अविनाशी है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसे कालों का काल महाकाल जो सभी को खाएगा लेकिन उसको कोई खाने वाला नहीं है, वो महाकाल रुद्र कहा जाता है। इस ज्ञान का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं लेते, किसका ज्ञान यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसने रौद्र रूप धारण किया, ऐसा रौद्र रूप जो सारी तामसी सृष्टि का विनाश करा देता है। इस सृष्टि में सब रावण संप्रदाय बन जाते या कोई रह जाता है? सब रावण संप्रदाय बन जाते तो सारी तमोप्रधान सृष्टि का विनाश उस एक के द्वारा ही होता है। बाकी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है या ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा नहीं होता। वो सब धर्म पिताएं आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन विनाश पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्म गुरुओं का पराभव नहीं कर सकते। ये एक ही धर्म पिता है जो सारी मनुष्य सृष्टि का, प्राणी मात्र का विनाश करता है, महामृत्यु लाने वाला है। तो बताया, सब बातें छोड़ दो कि आगे क्या होगा, पहले वो बात याद करो कि पतित पावन बाप आकर के हमको क्या देते हैं, मुक्ति जीवन, मुक्ति का भरसा देते हैं। कब देते हैं? संगम में देते, संगम में, संगम 100 साल का, उसमें भी कब देते हैं? कब देते हैं? अरे बाप तो कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो एक सेकंड में तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता, दख्त से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ। मैं जब आता हूँ तो शास्त्रों में भी गायन है, जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे दी। तो वो सेकंड कौन सा है जिसके लिए बोला, पुरुषोत्तम युग भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम है घड़ी भी है। तो बताओ, पुरुषोत्तम बनने की जो घड़ी है, उस घड़ी में पुरुषोत्तम, पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पूरी में स माने शयन करने वाली, आराम से शयन करने वाली ऐसी आत्मा जो सब आत्माओं के बीच में उत्तम है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। जब वो आत्मा पुरुषोत्तम बनती है, पुरुषोत्तम बनने की घड़ी है, पुरुषोत्तम बनने का वो सेकंड है, वो कब है?
जब बाप के बच्चा बनेंगे तब।
बाप के बच्चा बने ही नहीं अभी,
भर्ती करने के बाद,
भर्ती करने के बाद पुरुषोत्तम बन गए, सब आत्मा में उत्तम बन गए। बताया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, तो तुम बच्चे कब से शुरू हुए? तुम बच्चों का बाप कब से शुरू हुआ? कब से प्रत्यक्ष हुआ? कब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया? है 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। जब बाप आया तो बाप अकेला आता है या बच्चों के साथ आता है? है बच्चों के साथ ही आता है। तो बताया कि 40 वर्ष लगते हैं कम से कम तुम्हें सत्य प्रधान बनने में। नंबर वार तो जो पहला बच्चा होगा आत्माओं में बड़ा बच्चा, उसके लिए कितना टाइम दिया? 40 साल। कब पूरा हुआ? 1977 को बोला संपूर्णता वर्ष, और 2017 को बोला 40 वर्ष पूरे हुए। तो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी कब हुई? 2018। ये नहीं कहा आधे या मध्य या अंत 2018 का है। एक्यूरेट बताया क्या? नहीं। तो पुरुषोत्तम बनने की जो पुरुषोत्तम घड़ी है 2018 की, वो कौन सी आत्मा के लिए कहा गया? शिव के लिए कहा गया है। पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी शिव के लिए नहीं कहा गया। किसके लिए कहा गया?
कृष्ण बच्चे।
कृष्ण बच्चे के लिए कहा गया पुरुषोत्तम। जो कृष्ण बच्चा, कौन सा कृष्ण बच्चा? सतयुग का। सतयुग का जो जो बच्चा बड़े होकर के नारायण बनता है, तो लगातार उसकी कलाएं गिरने लगती हैं या ऊंची चढ़ती है? पतनशील पत्ता है या उद्धार मूर्त पत्ता है? उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले गए, उद्धार मूर्त। कैसी मूर्त? जो सभी आत्माओं को उत्त हर ऊपर की ओर ले जाए हरण करके, तो वो नीचे की ओर ले जाता है या ऊपर ले जाता है? स्वयं भी नीचे जाता है या स्वयं ऊपर जाता है?
स्वयं भी नीचे
है,
स्वयं भी नीचे जाता है, स्वयं भी नीचे जाता है।
स्वयं भी नीचे जाता है तो दूसरों को भी, अपने बाद जो भी आएगी उसके वंश में सबको नीचे ले जाने वाला हुआ। और जब वही नीचे ले जाने वाला है तो उसके बाद जो भी धर्म पिताए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो सब नीचे गिरते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। फिर बताओ वो कौन है जिसके लिए पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी कही गई है? वो पुरुषोत्तम घड़ी संगम युग में होती है या सतयुग में होती है? है? संगम में होती है। तो संगम में 40 वर्ष बताए, कम से कम 18 पूरे होते होते वो घड़ी आनी है। कैसी घड़ी? पुरुषों में उत्तम बनने वाली। किससे टैली किया? पुरुष रूप आत्माओं से टैली किया। शिव को किसी से टैली किया जा सकता है?
नहीं किया
है, नहीं किया जा सकता, वो तो तुरीय है। तो जिसको आत्माओं के बीच उत्तम से उत्तम कहा गया, उत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, वो आत्मा कुछ करती धरती है, पुरुषार्थ करती है स्वयं या अपने आप हो जाता है? सभी आत्माएं पुरुषार्थ करके अपना पद निश्चित करेंगी या कोई करा देगा? है, पुरुषार्थ करके करेंगी। तो वो अव्वल नंबर जो मनुष्य आत्मा है वो भी याद का ऐसा पुरुषार्थ करती है कि पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी उसकी पहले पहले आती है। इसलिए कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन, माना ज्ञान का अर्जन करने वाला कहो, सद्बुद्धि का अर्जन करने वाला कहो, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला कहो, अर्जुन कहा जाता है। वो अर्जुन का परिचय गीता में भी दिया है। जो नर से नारायण पुरुषों में उत्तम बनता है, क्या परिचय दिया? दो प्रकार की आत्माएं, क्षर मना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और उनसे ऊंची एक आत्मा अक्षर, जो क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती। और फिर बताया क्षरित होने वाली आत्माओं में भी पुरुषार्थ करके कोई आत्मा ऐसी भी है जो परमात्मा इति उदाहरत, परमात्मा नाम से कही जाती है। कैसी आत्मा? परमात्मा। परमात्मा माने पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी आत्मा विष्णु कही जाती है। क्या कही जाती? विष्णु पद, परम पदधारी, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम पार्टधारी आत्मा। तो बताया कि वो पुरुषोत्तम वर्षा लेने वाला है सदभाग्य का, या देने वाले है?
देने वाला।
लेने वाला नहीं है, है?
खुद ही आजम कर।
हर आत्मा अपना भाग्य, आत्मा स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु है। हर आत्मा अपना भाग्य अपने आप बनाती है। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, गीत भी बनाए हुए हैं, गाते रहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि हर आत्मा के अपने बुद्ध रूपी हाथ में तकदीर कैसे समाई हुई है। कैसे समाई हुई है? कि जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान बाप के बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं उनकी तकदीर बन जाती है, और जो भगवान के बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर चलते ही नहीं, मनुष्यों के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं या मनमत पर चल पड़ते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी को पहचानते ही नहीं, और पहचान करके उसके मुख से निकले हुए डायरेक्शंस को फॉलो ही नहीं करते, तो उनका भाग्य बनेगा?
नहीं बनेगा।
नहीं बनता। तो हर एक के अपने मुट्ठी में है अपना भाग्य बनाए या बिगाड़े। तो कौन इनहेरिटेंस देता है, वर्षा देता है, बेहद का वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का?
शिव बाप।
हाँ, शिव बाप नहीं,
शिव बाप
है।
शिव बाप,
शिव बाप के पास वर्षा है?
नहीं।
स्वर्ग का वर्षा है? हेवनली गॉड फादर है, हेवन बनाता है, इस सृष्टि को हेवन बनाता है। अरे, इस सृष्टि को हेवन नहीं बनाता, वो सिर्फ जिस रथ में, तामसी रथ में प्रवेश करता है, पांच तत्वों का 100% तमो प्रधान पुतला, महादेह अहंकारी, अहमदाबादी जिसको बोला, क्या सर्व सेंटर्स का बीज रूप कौन सा सेंटर बताया? अहमदाबाद। तो उस आत्मा को ज्ञान का वर्षा देता है, वो निराकार बाप। निराकार आत्माओं में से जो बड़ा बच्चा है उसको क्या देता है? हैं? ज्ञान का वर्षा देता है। फिर स्वर्ग का वर्षा कौन देता है? हाँ, स्वर्ग का वर्षा साकारी बाप देता है। ये कैसे?
जो मत मिलती उस मत पर चलने से स्वर्ग की वर्षा मिली।
हाँ, जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ आत्मा है उसकी मत पर चलता है, न मन मत पर चलता है न मनुष्यों की मत पर चलता है, गुरुडम को बिल्कुल खलास कर देता है। और मनुष्य आत्माएं गुरुओं के फंदे में फंसी रहती है। अभी भी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही कि नहीं देखना है। हम मनुष्यों की बातें सुनने लग पड़ते हैं, एक से ज्ञान सुनते हैं या अनेक देहधारियों को गुरु बना लेते हैं और चल पड़ते हैं। क्या होता है?
अनेक देहधारियों को गुरु बना लेते
हैं। तो बेसिक वाले बनाते होंगे, एडवांस वाले भी बनाते हैं, हैं? बनाते हैं? एडवांस वाले नहीं बनाते हैं? एडवांस वाले दीदी दादी दादाओं को गुरु बनाकर उनकी बातें प्यार से नहीं सुनते हैं, पूरा पोता मेरे शिव को ही देते हैं, अपने दिल की बातें और अपने अपने दिलावर नहीं बनाते हैं। बनाते हैं ना, बाप को नहीं बताएंगे, लेकिन जो दिल का दिलावर होगा उसके साथ आराम से लेटे लेटे सारी बातें एक दूसरे के कान में फूंकते रहेंगे। बोलो देखो अपने अपने अंदर फूंकते हैं या नहीं होते गए? फूंकते हैं, फूंकते हैं बाबा, बाबा फूंकते हैं। तो जब तक ये गुरुडम में फंसे हुए हैं और शूटिंग कर रहे हैं तब तक बड़े से बड़ा गुरु प्रैक्टिकल में इस दुनिया का कौन? साकार गुरु, देह अभिमानी गुरु, महादेह अहंकारी तो है, वो बड़े से बड़ा आत्मा अभिमानी भी बनता है और बड़े से बड़ा देह अहंकारी भी बनता है। कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज। उसको तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो मुकर रूप से कौन पार्ट बजाता? शिव बाप पार्ट बजाता। बाकी मनुष्यों में तो शिव बाप नहीं मुकर रूप से प्रवेश करता, करता है। तो बाकी जो देहधारी मनुष्य हैं, देहधारी धर्म पिताएं हैं या देहधारी धर्म गुरु बन करके बैठते हैं, एक दूसरे को बरगलाते रहते हैं, शिव बाप की बताई हुई बात के बरखिलाफ बोल करके और अज्ञान कान में भर देते हैं। जो बाप ने बोला, क्या क्या बोला? एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। और ये शूटिंग यहां करते हैं, अनेकों से ज्ञान सुनने की, तो द्वापर युग से फिर अनेकों से सुनने लग पड़ते हैं। इब्राहिम आता है, उसके फॉलोअर्स आते हैं, बुद्ध आता है, क्राइस्ट आता है, जो जो धर्म गुरु आते गए उनकी बातें सुनते गए और अपने धर्म को भूलते गए, धर्म पिता को भूलते गए, धर्म ग्रंथों को भूलते गए, और धर्म वाले कभी कन्वर्ट नहीं होते दूसरों की बातें सुन करके, और धर्म वाले दूसरे का धर्म ग्रंथ छुएंगे भी नहीं, इतने पक्के होते हैं। भारतवासी, भारतवासी जो दो वो उनके लिए हिस्ट्री में ही प्रसिद्ध है, वो लगातार द्वापर युग से लेकर 2500 वर्ष से लेकर के दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते ही रहे, इसलिए भारतवासियों की संख्या कम हो जाती है और दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ जाती है। भारत का जो सनातन धर्म है वो प्रायः लोप हो जाता है। जिस धर्म की परंपरा है, एक धर्म की धारणा पूरे परिवार में, एक ही पिता पूरे परिवार का, वो एक ही राजा बनकर के रहता है। 70-80 के परिवार इस भारत में ढूंढने से मिल जाएंगे जो एक चूल्हे पर खाना बनाते हैं, खाते हैं, उनका एक ही मुखिया, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, ऐसे नहीं परिवार का एक भांति कांग्रेस को वोट देगा, दूसरा भांति जनता पार्टी को वोट देगा, तीसरा भांति बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां एक जाएगा वहां पूरा परिवार जाएगा, ये है सनातनी परंपरा, सूर्यवंशी परंपरा, उसको भूल गए और दूसरों दूसरों की बातें सुन करके, दूसरों की ग्लानी सुन करके धारण कर ली और भारत के ऊपर से निष्ठा विश्वास हटता चला गया। आज भी भारत के जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी को भी टॉप करते हैं, वो सब बच्चे, अच्छे अच्छे विद्यार्थी देश में सेवा करते हैं या विदेशों में भाग जाते हैं। तो देखो ये दुर्गति हो जाती है जब एक बाप को भूलते हैं, एक बाप की भाषा को भूलते हैं, एक बाप की मत को भूल जाते। अभी भी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, इसलिए पूछते हैं कि शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, महादेह अहंकारी अहंकारी, अहंकारियों का जो बीज है सारी दुनिया का, उसकी तो बात छोड़ दो, बाकी जो देहधारी धर्मगुरु मनुष्य हैं, स्त्री रूप में हैं, पुरुष रूप में हैं, उनमें बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन, जो सारी दुनिया को अपने पंजे में लेके बैठ जाता है। सारा ज्ञान भूल जाते, जगदम्बा, जिसको भक्ति मार्ग में भगवान बना के बैठा दिया। कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार। कितना छोटा रूप शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप धारण कर दिया कि बड़ी बड़ी नदियों में भी नहीं समाता। वो महाकाली का रूप सारे संसार की रावण संप्रदाय वाली मनुष्य आत्माओं को अनिश्चय बुद्धि की मौत सुला देता है। किस कीमत पर? शिव बाप की बुद्ध रूपी हाथ की मत लेकर या माया से हाथ मिलाकर? माया से हाथ मिलाकर और सारी दुनिया को अपने कब्जे में लेके बैठ जाती है। और यज्ञ के आदि में भी वो शूटिंग हुई थी, मध्य में भी वो शूटिंग हुई, आदि में भी देहधारी मनुष्य गुरुओं में जो बड़े से बड़ा देहधारी ब्रह्मा दादा लिखराज वो तो शरीर छोड़ गया, उसकी आत्मा फिर किसमें अंत में प्रवेश करती है? महाकाली में चंद्रमा दिखाया जाता है, वही चंद्रमा इतना विकराल रूप धारण करता है कि सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को बाप से विपरीत बुद्धि बना देता है। बाप की जो हजार भुजाएं गाई जाती हैं ब्रह्मा की, बड़ी बड़ी सहयोगी लंबी लंबी भुजाएं, महाबाहु दीर्घ बाहु, उन भुजाओं को भी काट के अपनी कमर की लज्जा बचाई लेती है महाकाली। जो घाघरा पहनती है वो घाघरा काहे से बनता है? हाँ, भगवान की भुजाएं काट करके कमर में घाघरा बनाई लिया, अपनी कमजोरी छुपाए ली और बाप की ग्लानी उन्हीं भुजाओं के द्वारा संसार में फैलाई दी। ऐसा बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु उसके पंजे में आदि में भी आ गए थे, सन 36-37 में पहली बार ब्राह्मणों की रचना हुई ब्रह्मा के द्वारा, तो ब्रह्मा बाबा तो जब यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रारंभ हुई ब्रह्मा बाबा तो चौकड़ी मार के भाग गए। फिर यज्ञ की सत्ता किसके हाथ में आई? माताएं निमित्त बनी और माताओं में भी एक बड़ी माता और एक छोटी माता। बड़ी माता के द्वारा हेड के रूप में यज्ञ संचालन होता रहा। ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया ध्वस्त हो गई। कौन सी दुनिया शुरू हुई? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से दूसरी ब्राह्मणों की दुनिया शुरू हुई। 1947 में। तो पहली जो दुनिया ध्वस्त हुई वो किसको आधार बनाया? कौन आधार बना? माताएं। माताओं में भी मुखिया माता, बड़ी माँ, और जो बड़ी माताएं होती हैं, माताएं होती हैं, वो परिवार में खुदा न खास्ता बाप चला जाए तो किसको निमित्त बनाती है? मुखिया के बतौर बच्चों को। तो कृष्ण बच्चा निमित्त बन गया, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय शुरू हो गया, दूसरी दुनिया बनी ब्राह्मणों की। 69 में ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया, दादा लेखराज ने, वहां से विघटन शुरू हुआ। ब्रह्मा कुमारियों ने उसी वर्ष अपने अपने जोनल इंचार्ज बनकर के अपने अपने जोनल अलग अलग कर लिए। जो मुरली में बोला है, क्या क्या बोला? जब अर्ध विनाश होता है तो बाद में द्वापर युग के आदि में ही अपना अपना जो प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और अरब खंड अलग स्थापन कर लिया। फिर धीरे 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 और खंड स्थापन होते गए। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद जो माउंट आबू से ब्राह्मणों का संचालन होता था वो संगठन जोनल इंचार्जेस के रूप में विघटित तो हो गया, और उस विघटन की आखिरी स्टेज मुरली में बता दी। 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो देह अभिमानियों ने समझ ही नहीं पाया कि ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो रही है। ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन शुरू हुआ 1976 से, और एडवांस पार्टी का उत्थान शुरू हुआ। एडवांस पार्टी का जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया वो बाप की ये धारणा हुई, आप मुए मर गए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो ब्राह्मणों की दुनिया थी उससे मर गया, उससे कनेक्शन बुद्धि का तोड़ दिया, आप मुए मर गई दुनिया, और नई दुनिया का सृजन फिर से शुरू होता है। तीसरी बार दुनिया रची गई, उसके लिए भी बोल दिया 40 वर्ष में तुम बच्चे 40 से 50 वर्ष में तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। इसका मतलब है कि जो ब्राह्मणों की तमोप्रधान दुनिया थी 1976 में, जिसका विघटन शुरू हुआ पुरजोर से, वो दुनिया का भी पूरा विघटन कब होगा? जब ब्राह्मणों की नई राजधानी तैयार हो जाएगी। कब तैयार होगी? 18 महाशिवरात्रि गाई हुई है, छोटी मोटी रात्रि नहीं। कैसी रात्रि? महान अज्ञान अंधकार की रात्रि जब शुरू होती है तो क्या होता है? है शिव जयंती, शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो शिव का प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म होता है तो नई दुनिया बनती है या नहीं? क्योंकि विरुद्ध है, मैं जब आता हूं तो एक सेकंड में तुम्हारी राजधानी दक्ष से स्थापन कर देता हूं। छोटी राजधानी होगी या बड़ी होगी? छोटी राजधानी तैयार होती है, संपन्न आत्माओं की होगी या कोई कोई उसमें अधूरी आत्मा भी होगी? जो भी आत्माएं होंगी उस राजधानी में सब संपन्न आत्माएं, ऐसी संपन्न आत्माएं जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाती हैं। तो नई दुनिया ईश्वरीय राजधानी तैयार हुई तो आसुरी राजधानी का खेड़ बखेड़ा होगा या बचा रहेगा? खेड़ बखेड़ा होना निश्चित है। तो ये तीसरी बार पुरानी दुनिया जो ब्राह्मणों की रची गई थी उसका विघटन होता है, और उसका कारण क्या होता है? हाँ, ज्ञान को विविचारी बनाए देते हैं। एक बाप को पहचाना, दुनिया के सामने ढोल पीटा, हमें भगवान बाप मिल गया, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत मिल गया। पीटा या नहीं पीटा? बेसिक ब्राह्मणों ने भी ढोल पीटा, एडवांस वालों ने भी ढोल पीटा, लेकिन मनुष्य गुरुओं की बातें सुनना बंद नहीं किया। भक्ति मार्ग में आज भी मानते हैं सदगुरु निंदक ठावर न पावे। सदगुरु एक या अनेक? एक। एक सदगुरु तो बाकी कैसे हुए? सत माने सच्चा। एक सदगुरु तो बाकी गुरु कैसे हुए? सारे झूठे हैं, उनकी बातें सुनना ही नहीं चाहिए। एक कान से सुनो, मुरली में क्या बोला? फालतू बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो एविल, डोंट केयर। उन बातों पर कोई तवज्जो नहीं देना, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, समाज के बगैर रह नहीं सकता। अपने दिल को जो आत्माएं भा जाएं, उन्हीं के संग में रहना पसंद करेगा, उन्हीं से बतियाएगा, उन्हीं को देखना पसंद करेगा, उन्हीं की सेवा में अपना तन मन धन लगाएगा। जहां मोह लग जाता है तो माया ने तो हाथ मिला ही लिया प्रकृति से। जो प्रकृष्ठ कति है ईश्वर की, बड़ी पावरफुल रचना है, इतनी पावरफुल है कि सारी मनुष्य सृष्टि का ध्वंस कर देती है। माया में इतनी शक्ति नहीं है जो बाप के बच्चों का कुछ बिगाड़ सके। इसीलिए अव्यक्त वाणी में बोला, माया तंग आ चुकी है। क्या? किससे तंग आ चुकी है? है? बाप के योगी बच्चों से तंग आ चुकी है। ये बात बोली और उसके थोड़े दिन के बाद माया का जो प्रैक्टिकल रूप है, जो ईश्वरीय ज्ञान के सामने दीवार बना करके खड़ी कर देती है। इस्लाम धर्म मुसलमान धर्म में कौन सी इबादत का स्थान होता है जहां दीवार बनाई जाती है सामने? मस्जिद। वो प्रैक्टिकल चैतन्य मस्जिद का काम करती है। मिस जिद, कैसी मिस है? तो कुमारी, लेकिन बड़ी बड़ी जिद्दी है। भले बाप के बच्चों से तंग आ जाती है, साकार शरीर छोड़ भी देती है, तो भी क्या करती? तो भी हिम्मत हिम्मत नहीं हारती। और रिजल्ट क्या होता है? हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। बाप तो मदद करने के लिए हाजिर रहता है, कौन से बच्चों की मदद? जो हिम्मत करते हैं, वो भी बेटी है। अरे बाप के घर की बेटी है या नहीं? बाप के घर मधुबन में आती है या नहीं आती है? आने का हक है या नहीं? हक है। तो वो तंग आ जाती है, शरीर भी छोड़ देती है, तो भी हिम्मत नहीं हारती, और बाप उसकी मदद कर देता है युक्ति बताने में। क्या युक्ति बताई? क्या युक्ति उसकी बुद्धि में आती है?
पहले सरेंडर
नहीं, उसकी बुद्धि में युक्ति आती कि बच्चों के बीच में ऐसा बच्चा कौन है जो प्रकृष्ट कृति है, पहली रचना है भगवान बाप की, सबसे जास्ती रचना पावरफुल है वो, उसे हाथ मिला लो, तो हाथ मिला ही लेती है। अब प्रकृति जड़ बुद्धि, कैसी बुद्धि? जड़तमय बुद्धि, माया की चाल को पहचान नहीं पाती, हाथ आराम से मिला लेती। फिर क्या? फिर रिजल्ट क्या होता है? हैं? बाप का जितना भी ब्राह्मण परिवार है, सबको अनिश्चय बुद्धि बनाती हैं, दोनों माताएं मिलकर। एक को भी बाप के ऊपर पक्का निश्चय बुद्धि छोड़ती नहीं। जैसे यज्ञ के आदि में भी बाप था, प्रैक्टिकल में पियू नाम से जाना जाता था। पियू की वाणी बड़ी प्रसिद्ध थी, सब अनिश्चय बुद्धि हो गए, उस वाणी को जमीन दोज कर दिया। वाणी चलाने वाले के लाश को भी गुम कर दिया। तो बाप को कहना पड़ता है कि राम फेल हो गया। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वो राम वाली आत्मा फेल हो गई, फेल हो गई माना फाइनल पेपर में फेल हो गई है। फाइनल पेपर तो हुआ ही नहीं, फाइनल पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई, उस समय अधूरी पढ़ाई थी। क्या पूरा ज्ञान नहीं था? और अभी बाप कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी है मैंने सब बच्चों को दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो ज्ञान पूरा हुआ? ज्ञान बुद्धि में पूरा आ जाता है तो वो ज्ञान गीता ज्ञान कहा जाता है या गीता ज्ञान अमृत कहा जाता है? अमृत कहा जाता है। जब तक ब्रह्मा जीवित रहे तब तक गीता ज्ञान कहा गया मुरली में, बाद में है बाद में गीता ज्ञान अमृत साबित होता है तब जब मनन चिंतन मंथन किया जाता है, सागर मंथन किया जाता है। सागर जो पिता है, ज्ञान का भंडार है और पृथ्वी रूपी माता को जो चौथाई हिस्से में फैली हुई है पृथ्वी और सागर तीन हिस्से में फैला हुआ है, वो माता को गोद में लेकर बैठा हुआ वो बाप जो ज्ञान का सागर कहा जाता, सूर्य नहीं, क्या कहा जाता? सागर। पृथ्वी और सागर अटैच हैं या पृथ्वी सूर्य अटैच हैं, जुड़े हुए हैं? हैं? सागर और पृथ्वी का मेल है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सूर्य तो डिटैच रहता है, वो कौन है? वो सूर्य कौन है? है शिव बाप, बाबा शिव बाप। असली ज्ञान सूर्य है और जब इस सृष्टि पर आता है तो क्या करता है? आप समान सूर्य बनाता है। सूर्य है, सबको रोशनी देता है या किसी को देता है किसी को नहीं देता? तो जिसको टाइटलधारी ज्ञान सूर्य बनाता है वो आत्मा भी सच रूपी रंगमंच पर आकर के सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देती है या किसी को देती है किसी को नहीं देती है? सबको देती है जीवन मुक्ति का वर्षा। और जीवन मुक्ति का वर्षा स्वर्ग में मिलता है या नरक में मिलता है? हेवन में मिलता है या हेल में मिलता है? कहाँ मिलता है? हेवन में मिलता है। वो हेवन की शुरुआत संगम से ही होती है। है विन क्या है? विजय। झंडे में क्या लिखा जाता है? सत्यमेव जयते। किसके लिए, कौन सी मूर्ति के लिए सत्यमेव जयते? ब्रह्मा सत्य, विष्णु सत्य या तीसरी मूर्ति जयते? कौन है विश्व विजयी? शंकर के लिए कहा जाता हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, वो विश्व पिता है। तो जो विश्व पिता है वो आकर के विश्व के सभी विश्व धर्मों को, उनके फॉलोअर्स को कम से कम एक जन्म की मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर देता है। किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर या बिना ज्ञान दिए? ज्ञान के आधार पर। अभी सारी सृष्टि में ज्ञान फैल गया? फैल गया नहीं फैला? ब्रह्मा कुमारियों द्वारा इतनी भागदौड़ हुई, एडवांस पार्टी द्वारा इतना मनन चिंतन मंथन हुआ विस्तार में, लेकिन सारी दुनिया को वर्षा नहीं मिला। वो वर्षा इंद्रियों की सेवा के द्वारा मिलेगा या वाइब्रेशन के द्वारा मिलेगा? है योग बल के द्वारा जब इतना एकाग्रता का वाइब्रेशन तैयार होगा तब सारी सृष्टि को स्वतः ही वर्षा मिलेगा, ज्ञान का वर्षा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस हेवनली गॉड फादर को, जो हेवन का रचयिता कहा जाता है, रचयिता साकार होता है या निराकार? साकार होता है। वो साकार जो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है वो किसकी मत पर हेवन संरचता है? मनमत पर, किसी मनुष्य की मत पर हेवन रचता है? कैसे रचता है? योग बल के आधार पर, मन बुद्धि का योग, बुद्धिमानों की बुद्धि सुप्रीम सोल से लगाने के आधार पर। ऐसी जब एकाग्रता हो जाती है और से एकाग्रता को 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं धारण करती हैं प्रैक्टिकल जीवन में, माना महामंत्र धारण करती हैं। कौन सा महामंत्र? मन मना भव। किसने बोला? अरे कोई ने कहा होगा ना, मेरे मन में समाया। किस आत्मा ने कहा?
मनुष्य
सृष्टि के बाप ने कहा? शिव बाप ने नहीं कहा? शिव बाप को मन नहीं होता, वो तो अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है, वो कभी बेचैन होता ही नहीं। तो बेचैन कौन होता है? सबसे ज्यादा इस सृष्टि में चैन में कौन रहता है उस आत्मा का नाम बताओ, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, जो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती चैन भी महसूस करती है और बेचैन भी महसूस करती है, वो आत्मा का नाम बताओ। कृष्ण वाली आत्मा है, सबका बाप है ना, बेचैन होने वालों का बाप नहीं है कृष्ण है। कृष्ण तो बेचैन होने वालों का बाप नहीं है, वो सबका बाप है, सभी मनुष्य मात्र का, बेचैन से बेचैन मनुष्य का भी बाप है। बाप जितना बेचैन होता है उतना कोई बेचैन होता नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में रोने वाले भी हैं और हंसने वाले भी हैं। वो रोने वालों का भी बाप है या नहीं है? है? रोने वालों का बाप नहीं है?
है,
है, है। इसीलिए मुरली में बोला बाप को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया।
ये क्या बात हुई?
है सुप्रीम सोल बाप रोता है? है वो तो रोने की बात ही नहीं, वो ना हंसता है न रोता है, उसे प्रसन्न होने की बात भी नहीं, दुखी होने की भी बात नहीं। कौन होता है? मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो अति तमो प्रधान हो जाता है तो वो बेचैन हो जाता है। क्या क्या हो जाता? बेचैन हो जाता है। और जब सत्व प्रधान बनता है तो उससे ज्यादा चैन में कोई रहने वाला विष्णु जैसा परम पदधारी कोई होता ही नहीं। ब्रह्मा सु विष्णु को आ जाता है, जिसमें प्रवेश करता हूं उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, तो चार ब्रह्मा की भुजाएं चार विष्णु रूप कही जाती हैं भुजाओं के रूप में। भुजाएं अपने आप चलती हैं, कोई चलाने वाला होता है? चलाने वाला होता है, वो ऊपर है। तो पांच आत्माएं हैं जिनमें शिव प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा देता है। तो पांचों आत्माएं स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती हैं, तब क्या कहा जाता है? विष्णु चैन में रहने वाला, अमन चैन में रहने वाला। कैसा अमन चैन? सर्प बड़े विकारी होते हैं, ऐसे सर्प सर्पणियों की शैया पर लेटा हुआ है और उसको कोई बेचैनी अनुभव नहीं होती। नहीं तो रजाई में एक सांप घुस जाए और हाथ पड़ जाए तो क्या करेंगे? हैं? अरे उठ के भागेंगे कि नहीं? चोर चार के रजाई कितनी भी सर्दी हो बेचैन हो जाएंगे। तो बताया जिसके पास स्वयं की कमाई हुई प्रॉपर्टी है, क्या स्वयं की कमाई हुई प्रॉपर्टी है, वो ही बाप बनकर दूसरे बच्चों को वर्षे में दे सकता है। खुद प्रॉपर्टी का भोग नहीं किया है तो दूसरों को भी बच्चों को दे सकता है? नहीं दे सकता। जमींदार है तो जमीन का वर्षा देगा क्योंकि जमीन का भोग ही है। धनवान बाप है तो धन को भोगा है तो धन का वर्षा बच्चों को भी देगा। जीवन मुक्ति का वर्षा जीवन में रहते हुए जिसने वो सुख का वर्षा जीवन में रहते सबसे जास्ती भोगा है बीज रूप बाप के रूप में, वो अपने बच्चों को भी देता है। तब हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन का रचयिता। लेकिन वो हेवनली गॉड फादर की आत्मा जो हेवन का रचयिता है, साकार है निराकार? रचयिता साकार या निराकार? और रचना? रचना भी साकार, रचयिता भी साकार, कुमार भी साकार और घड़ा भी साकार। तो जो रचयिता साकार है उसकी खासियत क्या है? कि वो एक ही रचयिता है सारी सृष्टि का। शास्त्रों में गायन है, किस नाम से? अरे ये तो ढेर सारे भक्त गाते हैं, एक का गायन है। अरे आधा नाम एक
ऑर्डिनरी
सर। एकलव्य, क्या नाम दिया? एकलव्य का मतलब क्या हुआ? है एक ही आत्मा को लव करता है और कोई को लव नहीं करता है उसके मुकाबले। इसलिए एकलव्य गाया हुआ है, वो एकलव्य जंगल का वासी है या महलों का वासी है? है? ये सारा संसार कांटों का जंगल है, जहां भी जाओ क्या कांटे क्या करते हैं? है? दुख देते हैं, घाव बनाए देते हैं। तो ऐसे संसार रूपी जंगल में रहने वाला दिखाया, ऐसे संसार रूपी जंगल में रह करके रावण संप्रदाय के मनुष्य मात्र से उसकी लड़ाई है क्या? सबा से लड़ाई है या किसी से एवरलास्टिंग दोस्ती भी है मनुष्य मात्र से?
रावण संप्रदाय से।
रावण और राम संप्रदाय कोई है? रावण की राम की घरवाली राम संप्रदाय है? है? जब घरवाली ही पहली रचना वो ही राम संप्रदाय नहीं है तो कोई दूसरा राम संप्रदाय बनेगा? कोई नहीं बनता। आगे पीछे की बात है। अष्टदेव वो सदा काल के मित्र बन करके रहेंगे राम वाली आत्मा के है? रहते हैं। माया उनको नहीं पड़ती, माया उनको छोड़ देती है। अरे माया किसी को छोड़ती है? नहीं छोड़ती। अगर एक को भी छोड़ दे तो आधे कल्प का राज्य उस एक के हाथ में ही चला जाएगा। इसलिए वो सबको हरा देती है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि का जो राम बाप बीज है उसको नहीं हरा पाती। तो 40 वर्ष पूरे होंगे, एक सुरक्षित रहेगा माया के आक्रमण से और बाकी सबको माया हरा देगी।
2018 में
यज्ञ की याद में भी ऐसे ही हुआ था, मध्य क्षेत्र में भी ऐसे ही हुआ था। सारी ब्राह्मणों की दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एडवांस पार्टी की फर्स्ट आत्मा एक तरफ। कोई सहयोगी था? कोई सहयोगी नहीं था। ऐसे ही ब्रह्मा ने तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि क्या कारण हुआ? अरे क्योंकि से सभी बच्चे देहधारी धर्मगुरुओं के मुरीद बन पड़े। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। ये किसने बोला? किसने बोला? शिव बाबा ने बोले, मुकर्रर रथ के द्वारा बोला। जब ब्रह्मा मौजूद थे तब भी ये बात लागू होती थी और अभी भी यही बात लागू हो रही है। चाहे सरेंडर्ड है चाहे नॉन सरेंडर्ड है, आगे पीछे सबको यही पार्ट बजाना है। क्या कोई मम्मा जैसे देहधारी के मुरीद, कोई ब्रह्मा जैसे देहधारियों के गुरुओं के मुरीद, उनके पीछे मरने वाले शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। झूठा बोला? बोलने वाले ने झूठा बोला या सच्चा बोला?
सच्चा बोला।
सच्चा बोला, लेकिन अभी विश्वास होता है इस बात पर? ऐसा हो सकता है?
हैं?
जब समय आएगा तब देखेंगे। अच्छा, तो बोला, पतित पावन बाप इनहेरिटेंस देते हैं वर्षा देते हैं और स्वर्ग को भारतवासियों को बहुत खुशी होती है। कहाँ के वासियों को? भारतवासी। भारतवासी क्यों कहा? जड़ जमीन के वासी?
नहीं।
हाँ,
भारत माने ज्ञान के,
ज्ञान के वासी,
चैतन्य ज्ञान के वासी
है। कोई चैतन्य आत्मा है जिसके लिए बोला भारत माता भारत पिता। भारत माता कहते हैं तो कोई विधवा माता थोड़े ही है। भारत में विधवाओं की पूजा होती है? होती है। तो विधवा होगी या सधवा होगी? हैं? सधवा माता है। माता है तो जरूर साथ में पिता भी है। तो बोला भारतवासियों को बहुत खुशी होती है। वो भारत माता की जो आत्मा है, ज्योतिबिंदु आत्मा, उसको क्या महामंत्र मिला हुआ है? अरे भूल गए, मन मना बहु, मेरे मन में समा जा। कौन सी मूर्ति है जिसके मन में समा जा? है शिव की मूर्ति। क्या है?
तीसरी मूर्ति।
है
तीसरी मूर्ति।
तीसरी मूर्ति शंकर, तीन का मेल, तीन का संकरण, तीन का संकरण जिसमें है वो शुद्ध है, पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ पूरा हो गया, याद में बैठा है या याद का सब्जेक्ट पूरा कर लिया, तो अधूरा है ना, तो शंकर तो नहीं हो सकता है। तो जो नारी से लक्ष्मी बनने वाली, लक्ष्य का प्राप्त करने वाली आत्मा है, वो लक्ष्मी की मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु किस में वास करती होगी? अरे
नारायण।
नारायण तो बाद में बनता है। नारायण 16 कला संपूर्ण होता है। नारायण बड़ा या नारायण को बनाने वाला बड़ा? वो कौन? उसका मूर्त रूप है या नहीं है? अमूर्त है। शिव बाबा माने साकार निराकार का मेल है, है तो उसकी पूजा होती होगी। है
लिंग रूप में,
भिन्न रूप में, अनेकों रूप में,
लिंग रूप
में, लिंग रूप में पूजा होती है। जो लिंग रूप में पूजा होती है उसमें साकार बड़ा रूप लिंग भी है और ज्योति बिंदु भी है। आज की तमोप्रधान दुनिया में बिंदु रखना भूल गए, क्योंकि सब देह अभिमानी हो गए, अपन को देह समझने लगे। जब द्वापर का आदि था तो द्वापर भी चार अवस्थाओं से गुजरता है कि नहीं? सत्व प्रधान होता है कि नहीं? जब सत्व प्रधान द्वापर था तो कौन सा मंदिर यादगार बना? सोमनाथ मंदिर में वो यादगार दिखाई गई कि उसका साकार रूप भी जो इस सृष्टि पर सदा काल है, पांच तत्वों का संघात बीज रूप में, और उसका चैतन्य रूप आत्मा भी जो इस सृष्टि पर ही परम धाम को उतार लेती है पहले पहले, वो भी इस सृष्टि पर सदाकाल मौजूद है। आत्मा और शरीर दोनों ही मौजूद रहते हैं, जिसके लिए बोलते हैं सत्ता का कभी अभाव होता ही नहीं। वो शिवलिंग सार्वभौम पूजनीय है। सारे भारत में तो क्या, विदेशों में भी सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली और दुनिया भर में शिव के मंदिर ही यादगार जास्ती बने हुए। उसी के लिए कहा जाता है, सामने जाकर भक्त लोग भी कहते हैं तम एव तू ही, एक या दो चार, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। माता कौन?
माता कौन है?
ब्रह्मा। शिवलिंग में ब्रह्मा बैठा हुआ है, दाढ़ी मूंछ वाला है। हाय हाय हाय, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, भूलता ही नहीं है। शिवलिंग में कौन है मम्मा, कौन है माँ माता, कौन है पिता? अरे सोमनाथ के मंदिर में बताओ, कौन है माता कौन है पिता?
शरीरधारी माता,
लिंग है माता बड़ा रूप, और बिंदु है पिता। कौन सा पिता? बेहद के दो पिता हैं, है निराकार शिव, वो पिता है। वो तो कहता है मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, तो वो कैसे हुआ?
निराकार पिता
कौन है? निराकार आत्मा का नाम बताओ।
शिव।
वो तो कहता है मैं पुजारी बनता नहीं, मैं पूज्य भी बनता नहीं।
सर किसी रस में प्रवेश होता है
तो
राम बाप,
राम
है
राम बाप।
हाँ, जिस रथ में प्रवेश करता है वो रथ तो है महादेहाभिमानी देह अहंकारी, देह अहंकारियों का बीज।
जब
क्या है
प्रवेश होता है वो देह अहंकारी नहीं रहता है,
रथ नहीं रहता है,
रथ रहता है
तो रथ शरीर को नहीं कहा जाता है,
पतित पावन होता है,
शरीर पतित पावन होता है।
जब शिव प्रवेश होता है तब।
हाँ, शिव प्रवेश नहीं होता है, शिव जाता है कि नहीं? शिव इस सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को ज्ञान दे करके संपूर्ण जो बोला है, मेरे पास जो भी ज्ञान था सारा तुम बच्चों को दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। अब बाप को देने के लिए कुछ है? सुप्रीम सोल बाप को कुछ देने के लिए रह गया तो काय के लिए रह गया? और दिया तो किसको दिया?
बच्चों,
ढेर सारे बच्चों को दे दिया। सभी राजाएं अपनी प्रॉपर्टी सभी बच्चों को देते थे, बड़े वाले बच्चे को दिया। तो बड़ा बड़ा बच्चा जो है, जब बाप देखेगा कि इसने पूरा ज्ञान धारण कर लिया, ज्ञान को पूरा धारण करना माना ज्ञानी हो जाना, क्या
ज्ञानी?
क्या
ज्ञान को पूरा,
ज्ञान को धारण कर लिया माने ज्ञान के बीज को भी धारण कर लिया और ज्ञान के विस्तार को भी धारण कर लिया। ज्ञान का जो विस्तार है उसे कहते हैं सांख्य, सह आख्या, आख्या माने व्याख्या के साथ। ज्ञान कैसा धारण कर लिया? संपूर्ण व्याख्या के साथ ज्ञान को धारण कर लिया। तो संपूर्ण व्याख्या को धारण कर लिया तो संपूर्ण योगी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सांख्य योग पृथक बाला प्रबदंते न पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है क्या? सांख्य और योग माने संपूर्ण ज्ञान और योग, ये अलग अलग बातें नहीं है। संपूर्ण ज्ञान हुआ माने संपूर्ण ज्ञानी हो गया, तो संपूर्ण योगी भी हो गया। तो बाप देखेगा ना कि संपूर्ण योगी हुआ, निरंतर योगी हुआ, या बीच बीच में सेकंड दो सेकंड चार सेकंड के लिए अंतर पड़ता है, है? अंतर पड़ता है तो संपूर्ण योगी है नहीं। तो देखो धर्म पिताएं आते हैं परम धाम से, बाप के घर से, उनके चेहरे से क्या दिखाई पड़ता है? देह दिखाई पड़ता है, देह अभिमानी चेहरा दिखाई पड़ता है कि आत्मा अभिमानी चेहरा दिखाई पड़ता है? निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है या साकार दिखाई पड़ते हैं? क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, ध्यान से देखो, कैसी स्टेज है? हैं? निराकारी स्टेज है। और बाप ने भी मुरली में बताया कि बाप की जब प्रत्यक्षता होगी तो अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। कैसी स्टेज? अव्यक्त। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जिसे आंखों से न देखा जाए, ऐसी अव्यक्त स्टेज है। क्राइस्ट को, बुद्ध को, नानक को मनुष्यों ने इन आंखों से देखा या नहीं देखा? देखा नहीं देखा? देखा ना, तो प्रभावित हुए या नहीं हुए? प्रभावित हुए माने प्रजा बन गए, उनके फॉलोअर बन गए। ऐसे ही अभी भी अव्यक्त वाणी में बता दिया, जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसको पक्का पक्का एवरलास्टिंग विश्वास हो जाए क्या कि मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, मेरा बाप आ गया। चाहे कोई भी धर्म का हो, जो इन आंखों से देखे उस अव्यक्त स्टेजधारी को, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने उस अव्यक्त स्टेजधारी के द्वारा, उसको क्या हो जाए? पक्का विश्वास हो जाए कि मेरा बाप इस सृष्टि पर आ गया। तो बताया, भारतवासियों को बहुत खुशी होती है। पहले खुशी किसको होगी? भारतवासियों को। भारतवासी का मतलब क्या? जमीन के वासी,
ज्ञान
के वासी, चैतन्य वासी।
चैतन्य,
अरे मन मना भव का मतलब क्या है? मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा? शिव बाबा के मन में।
शिव
बाबा कौन? शिव बाप कहते हैं कभी, शिव बाबा कहते। किसके मन में समा जा? अरे किसको मन है? राम वाली आत्मा ही योग बल का पुरुषार्थ करके आत्मिक स्टेज को निरंतर धारण कर लेती है। जो निरंतर ज्योति बिंदु स्टेज में टिक जाता है वो ही शिव समान स्टेज को धारण करने वाला टाइटल धारी शिव हो गया। लेकिन वो आत्मा अपन को शिव नहीं समझेगी, वो फिर भी जो ज्योति बिंदु स्वरूप है उस स्वरूप को उस बाप की देन समझेगी। किस बाप की? शिव बाप की देन समझेगी। अगर ये अहंकार आता है कि मैंने ये स्टेज प्राप्त की तो बाप का वफादार बच्चा हुआ है? नहीं हुआ। बाप है, देने वाला है तो जो देने वाला है उस देने वाले को हमेशा रिगार्ड देना है या नहीं देना है? या औरंगजेब की तरह है?
हमेशा
रिगार्ड देना है, नहीं तो एहसान फरामोश कहा जाता है। किसको? जो देने वाले को स्वीकार न करे कि ये देने वाला है, उसको मान्यता ही न दे अहंकार में आकर के, तो क्या कहेंगे उसको? एहसान फरामोश। श्रेष्ठ आत्मा हुई या नीच आत्मा हुई? है नीच आत्मा हुई। तो सुप्रीम सोल बाप ने ये परंपरा डाली कि बाप ऐसे बच्चे को वर्षा देता है जो बच्चा षष्ठी के आज से लेकर के अंत तक कभी भी नास्तिक नहीं बनता। हाँ, संगम युग में आकर के जब माया से लड़ाई होती है तो माया के सामने देह अहंकारी दुनिया का सबसे बड़ा बन जाता है। इसलिए बोला कि मैं रथ लेता हूं, रथ में आता हूं, इंद्रियों का आधार लेता हूं पार्ट बजाने के लिए। क्या रथ के लिए बोला? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये रथ जो है तेरा, यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। क्या? सब धर्मों का बीज कहाँ पड़ा हुआ है? हाँ? दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों का बाबा कौन है? शिव बाप तो नहीं हो सकता, कौन है? देहधारी आत्मा हो सकती है। तो राम वाली आत्मा सभी धर्मों का ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर से सभी धर्मों वालों को बाप का वर्षा मिलता है। वो राजयोग नहीं सीखते। क्या
सिखाता है? सीखते
हैं।
राजयोग नहीं सीखते हैं, लेकिन सिखाता है, रास्ता दिखाता है राजयोग के।
शिव राम वाली आत्मा राजयोग सिखाती है,
रास्ता दिखाता है।
किसको?
बच्चों को,
माने इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को राजाई यहाँ संगम में देता है, है?
तो
देता है या नहीं देता है? है?
नहीं देता।
हाँ, जो शिव बाप है वो राजाई देता है, और शिव बाप के अलावा जो राजाई है, कंट्रोलिंग पावर है, वो और कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। भले दूसरे दूसरे धर्मों में राजाएं बने हैं, लेकिन वो हिंसक राजाएं बने हैं, आततायी राजाएं बने हैं, विस्तारवादी राजाएं बने हैं, या भारत के राजाओं जैसे बने हैं? नहीं बने। तो हिंसक युद्ध करते हैं वो, कौन? धर्म पिता है। क्यों?
ज्ञान प्राप्त नहीं किया है,
है? अच्छा, कृष्ण वाली आत्मा प्राप्त करती है? करती है कि नहीं? कृष्ण वाली आत्मा सतयुग का नारायण बनेगी, पहला नारायण, तो प्राप्त करती है या नहीं करती है?
अब सुनती है
कृष्ण वाली आत्मा प्राप्त नहीं करती?
करती है, लेकिन
करती है। अब करती है, अब करती है तो महाकाली में प्रवेश नहीं करेगी। ज्ञान बड़ा चटपटा अटपटा खटपटा है। बताया भारतवासियों को बहुत खुशी होती है। असल भारतवासी कौन? जो षष्ठी वृक्ष की दाई ओर की डालियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो डालियां नीचे की ओर झुकने लगती है, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भारतवासी हैं, क्योंकि सत्युगत्रिता में तो देवता बन के रही ना, वहां से जन्म लेते लेते आई ना द्वापर में, दाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट हुई। कुछ आत्माएं हैं जो बाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो गई, विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हुई और नीचे डालियां जाने लगी। एक ऐसा तना है जो आदि से लेकर के अंत तक सीधा ऊपर जाता है, उसको जो फॉलो करने वाले हैं वो आत्माएं उद्धार मूर्त हैं। उत हर, उत माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाने वाली, उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माएं हैं, वो हैं सच्चे भारतवासी। कन्वर्ट होने वालों को सदा काल का भारतवासी कहेंगे? नहीं कहेंगे। चाहे भारतीय धर्मों में कन्वर्ट हो, चाहे विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो, दूसरों की बातें सुनते हैं, एक पर श्रद्धा विश्वास कायम नहीं रखते हैं तो वो विविचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान को विविचारी बनाया। जो एक के अलावा और कोई की बातें कान पर नहीं धरते, नहीं सुनते, न दूसरों को सुनाते हैं। श्रीमत के बरखिलाफ बात दूसरों को सुनानी चाहिए, अच्छी लगे अपने को, लेकिन श्रीमत के बरखिलाफ बात है तो दूसरों को सुनानी चाहिए या नहीं सुनानी चाहिए?
नहीं
सुनानी चाहिए, लेकिन जिससे दिल लगा होता है उसको कुछ उल्टी पलटी बात सुन लेते हैं तो भी जरूर सुनाते हैं। तो एक के अलावा औरों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान, यहां सुना, शूटिंग हो गई, वहां भी क्या करेंगे 2500 वर्ष के बाद दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो यहां शूटिंग ऐसी करते हैं कि बाप की गिलानी सुनी और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिए, हियर नो इविल, उस ईविल बात को सुनना ही नहीं है, जवाब देने की तो बात ही नहीं। हियर नो ईविल, आगे टाक नो ईविल, क्या किसी ने गंदी बात सुनाई वो सुनना भी नहीं है और उस गंदी बात का विश्लेषण प्रश्नोत्तर भी करना ही नहीं है। क्या जरूरत है हमको फालतू बातों में जाकर टाइम वेस्ट करना? तो उनको कहते हैं अब विभिचारी ज्ञान लेने वाले। अपने सनातन धर्म के थुर में सीधे ऊपर की ओर जाने वाले, षष्ठी वृक्ष के ऊपर कौन बैठा है? है कौन बैठा है? शंकर बैठा है। कपड़े पहन के, शरीर रूपी कपड़ा पहन के बैठा है कि नंगा बैठा है?
नंगा बैठा है।
शरीर रूपी कपड़ा भी नहीं, माना आत्मा नंगी है, नंगी आत्मा ने ऐसा रूप धारण कर लिया है जिस अव्यक्त मूर्ति में सारी आत्माएं खींची हुई मनमना भव के मंत्र के आधार पर उसमें समा रही है। किसमें समा रही है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट में समा रही है या मनुष्य सृष्टि के बाप में समा रही है? मनुष्य सृष्टि के बाप में मनमना भव हो रही है। जो बाप के मन में एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और शिव बाबा क्यों कहा? क्योंकि बाप ही कहते हैं। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से कौन याद आवेगा? बिंदी ही याद आवेगी। तो वो बिंदी की याद में ऐसा टिकता है कि जिन आत्माओं के ऊपर भी दृष्टि जाती है वो आत्माएं खिंची हुई चली जाती है। उसके लिए कहा गया तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। कौन से बच्चों को? जो दूसरी डालियों में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको, या तुम बच्चों माने किनको? जो आज से लेकर अंत तक कहां के वासी? भारतवासी हैं। तो तुम भारतवासियों को बहुत खुशी होती है। किस बात की है? किस बात की बहुत खुशी होती है? है कि हमको जो स्वर्णिम युग में ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है अतीन्द्रिय सुख का, वो सतयुग में जो कृष्ण होगा राधा होगी उनकी पीढ़ियों में किसी को मिलने वाला वो वर्षा नहीं है, अतीन्द्रिय सुख का वर्षा। क्योंकि वो राधा कृष्ण खुद ही एक दूसरे को आंखों से देख करके सुख में लीन कर रहे हैं या बिना आंखों का आधार लिए लीन कर रहे हैं? लवलीन कैसे हो रहे हैं? आंखें देह का अंग है, विनाशी देह का अंग है या अविनाशी का अंग है? विनाशी देह का अंग है। तो विनाशी देह का आधार लेते हैं तो खुद भी विनाश की ओर जाते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं, गिरती कला में जाते हैं और दूसरों को भी अपने फॉलोअर्स को भी पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी को भी नीचे ले जाते हैं। थोड़ी सी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्मों के प्रभाव में नहीं आती, उनको युद्ध भी करना पड़े। क्या? जो विदेशी आक्रांता है लाखों लाखों सेना लेकर के आए और इनके पास मुट्ठी भर सेना, तो डर करके झुक जाती है उनके सामने? हैं? नहीं झुकते, प्रभावित नहीं होते। इस बात की शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में रिहर्सल हो रही है। उन देहधारी धर्मगुरुओं के सामने सच्ची बात कहने में झुकने वाली आत्माएं नहीं हो सकती। अरे दीदी क्या कहेंगे, अरे दादा क्या कहेंगे, बोला है तो थोड़ी देर के लिए मान भी लो। कन्वर्ट हुए या नहीं? कन्वर्शन का वाइब्रेशन बनाया या नहीं बनाया? है बाप की जो सच्ची बात है वो उन आत्माओं के सामने जो श्रीमत के बरखिलाफ बात बोल रही हैं, कराना चाहती हैं, हम बोल नहीं सकते? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते, लिहाज करते हैं, हमारे से बड़े हैं। अरे जो ज्ञान को धारण करे वो बड़ा या जो ज्ञान को धारण ही न करे वो बड़ा? ज्ञान के आधार पर ब्राह्मणों में बड़े होते हैं छोटे होते हैं के ज्ञान के अलावा देवान के आधार पर छोटे बड़े होते हैं? ज्ञान के आधार पर छोटे बड़े होते हैं। तो तुम भारतवासी ज्ञान की लाठी का आधार लेते हो क्या? हाँ, मुरली का आधार लेते हो, मुरली तुम्हारी लाठी है, मुरली की लाठी के आधार पर चलते हो। तो बताया तुम भारतवासियों को, तो बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे अतीन्द्रिय सुख का वर्षा लेने के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही कहाँ होता है? भारत में। शिव बाबा का जन्म कहाँ है? भारत में है। शिव बाबा का जन्म भारत में है, क्या मतलब है? भारत में शिव बाबा का जन्म है, क्या मतलब है?
भारत में तो है
शिव बाबा का जन्म है,
प्रत्यक्षता
हाँ। माना प्रत्यक्षता कब होती है?
संपूर्ण
कब संपूर्ण होता है?
40 वर्ष
के बाद संपूर्ण होता है। तो क्या खास बात हो जाती है जो संपूर्ण बनता है?
देखते हैं
शिव समान अपने आप बन जाता है। भूल गए पहली अव्यक्तवाणी में बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या बोला? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। और शिव शक्ति निकले क्या? माया शक्ति रावण शक्ति नहीं बताया, जो रावण के पंजे में आ जाए क्या? शिव शक्ति उसके पंजे से बाहर निकल जाए, मुकाबला कर ले उन देहधारी धर्मगुरुओं का। शिव शक्ति अवतार भारत का यही नारा है। वो अवतरण ले
शिव शक्ति धर्म गुरुओं के पंजे से बाहर निकल रहा है।
पंजे से बाहर निकल रहा है, कौन निकलती है? वैष्णवी निकलती है। वो निकलती है और उसका पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट है, बोल बोले का पार्ट है, उसका पार्ट प्रैक्टिकल है, बोल बोल का पार्ट नहीं है, सुनने सुनाने का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझने और समझाने का पार्ट नहीं है। क्या विशेष पार्ट है? है प्रैक्टिकल पार्ट है। तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा का पार्ट है सुनने सुनाने का, शंकर का पार्ट है समझने समझाने का, लेकिन दो काम हो गए, सुन लिया सुना लिया। जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने सुन लिया, दूसरों को सुना भी दिया। खुद बाप को पहचाना?
नहीं
नहीं पहचाना। पहचाना ही नहीं तो प्राप्ति कहां से होगी? अच्छा शंकर दूसरी मूर्ति जो पार्ट बजाती है, समझ लिया ज्ञान को। मुरली में जो भी शिव बापा ने बोला वो गीता ज्ञान समझ लिया और दूसरों को समझा ही लिया, नारायण बन गया?
नहीं,
नहीं बना। कब बनेगा? जब प्रैक्टिकल में उसे ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके दिखाए, स्वयं धारण करे और साथी को भी धारण करके दिखाए। वैष्णवी शक्ति का साथी कौन? विष्णु देवता। स्वयं धारण करे और धारण करके दिखाए। धारण करना माने क्या? प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए जो यादगार मंदिर में रखी हुई है, कर्म करते हुए बाप की याद में ऐसी गहरी टिके कि उसके संग के रंग से जो साथी है वो भी पार लग जाए। माता गुरु कब कही जाएगी? है? करके दिखाएगी तो माता गुरु, या बिना किए एक माता गुरु? करके दिखाएगी। करके दिखाएगी तो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त कही जाएगी। करके दिखाया नहीं, दुनिया वहीं के वहीं कीचड़ में पड़ी हुई है, तो स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाली कही जाएगी या नरक का दरवाजा खोल के बैठ गई? क्या कहेंगे? नरक का दरवाजा खोल के बैठ गई। जो करना था कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए, जो करना था शिव बाप को याद करना था वो नहीं किया। दिल कर्म इंद्रियों के सुख भोगने में लगा दिया। तो कर्म इंद्रियों का सुख भोगने में अगर लगाए तो कर्मयोगी कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकता। इसलिए बताया, तुम भारतवासियों को बहुत खुशी होती है, तुम हो भारतवासी, भारत के मन में कहो, दिल में कहो बसने वाले, और किसी मनुष्य मात्र के दिल में मन में बसने वाले नहीं, क्योंकि जन्म ही भारत में शिव बाबा का यहाँ है। मन शिव बाबा पाठधारी जो है उसके प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब होता है? जब भारत माता शिव शक्ति अवतार होता है, अवतरण होता है। अवतरण हुआ, संग की रंग में आया तो जन्म हुआ, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि? बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। अज्ञान की अंधकार की रात्रि खत्म और ज्ञान का दिन शुरू।
2018 ही होगा,
एक आत्मा के लिए होगा, सबके लिए थोड़ा ही होगा। एक गुरु बने, माता के रूप में, पिता के रूप में, हैं? माता, माता गुरु। ये परंपरा कहां से शुरू होती है? संगम से शुरू होती है, जो देवताओं की दुनिया में अपनाई जाती है। द्वापर युग से भी जो देवी देवता सनातन धर्म के परिवार हैं, उनमें भी ये परंपरा अपनाई जाती है। खुदा न खास्ता बाप अगर शरीर छोड़ दे परिवार का मुखिया, तो बच्चे किसके आर्डर पर चलते हैं? माता के आर्डर पर चलते हैं। माता गुरु का सिलसिला अब चलता है। ओम शांति।